आर्यांश ने जो कुछ भी किया था उसके बारे में मिस्टर पृथ्वी कपूर को खबर हो चुकी थी। इस वक्त वो कपूर इंटरनेशनल में आर्यांश के ही केबिन में खड़े हुए थे। हालांकि मिस्टर कपूर ने पहले ही सार्थक से सारा सच जान लिया था, लेकिन उन्होंने आर्यांश के मुंह से जब सब कुछ सुना तो उन्हें बहुत गुस्सा आया था। उन्होंने आर्यांश को थप्पड़ तक लगा दिया था। आर्यांश ने काफ़ी सारी गलतियां की थी और उसकी सज़ा एक मामूली सा थप्पड़ तो बिल्कुल नहीं हो सकती थी। पृथ्वी कपूर ने सबसे पहले आर्यांश से कपूर इंटरनेशनल के CEO की पोजीशन से रिज़ाइन करवा दिया। अगर आर्यांश ने सब कुछ किया था तो उसकी सबसे बड़ी वजह ये थी कि उसके पास पैसा और पावर दोनों ही मौजूद थे और सबसे पहले उसे वो छीनना ज़रूरी था। अपनी पोजीशन से रिज़ाइन करने के बाद आर्यांश वहाँ से जाने लगा। तभी पृथ्वी कपूर ने उसे फिर से रुकने के लिए कहा। आर्यांश ने हैरानी से उनकी तरफ देखा। पृथ्वी ने यही कहा कि उसकी सज़ा अभी बाकी है। उन्होंने आर्यांश की तरफ घूर कर देखा और कहा, तुम्हारे पास जो भी मौजूद है इस टेबल पर रख दो। आज से तुम्हारी सारी पर्सनल असेट्स भी तुमसे ले ली जाती हैं, क्योंकि ये सब तुमने कपूर इंटरनेशनल के अंडर ही हासिल किया है। तुम्हारी सारी कार्ड्स मैंने पहले ही ब्लॉक करवा दिए हैं। बाकी तुम्हारा प्राइवेट घर और तुम्हारे नाम पर जो भी प्रॉपर्टी थी वो अब से कपूर फैमिली का हिस्सा होंगी, ना कि तुम्हारा। इस बार आर्यांश को सच में झटका सा लगा था और वो आंखें फाड़कर उनकी तरफ देखने लगा था। आर्यांश को यही लगा था कि अगर वो ये पोजीशन छोड़ भी देगा तो उसके लिए नुकसान की बात नहीं है। उसके अलग से खुद के बिजनेस, प्रॉपर्टी और बाकी सारा सेटअप किया हुआ था। वो खुद के दम पर भी काफ़ी कुछ कर सकता था। लेकिन पृथ्वी पूरी तैयारी के साथ वहाँ पर आए थे। उन्होंने सार्थक से आर्यांश की हर छोटी असेट्स के बारे में जानकारी निकाल ली थी और अब वो उससे वो सब छीन रहे थे। आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते हैं, आर्यांश ने अविश्वास भरे भाव के साथ कहा। क्यों नहीं कर सकता, पृथ्वी भौहें चढ़ाकर बोले। ये सब मेरा दिया हुआ है तो मैं तुमसे कभी भी वापस ले सकता हूँ। मैंने सुना है तुम्हें स्पोर्ट्स और लग्जरियस गाड़ियों का शौक है। वो सब उसी प्राइवेट विला में है ना जहाँ तुम दीवा के साथ रहते थे। उस घर की चाबी यहाँ रखो और जिस गाड़ी में आए थे उसकी चाबी अभी मेरे हवाले करो। तुम्हारे वॉलेट में जो भी कैश है वो भी तुम यहाँ टेबल पर रखने वाले हो। मैं तुम्हें अपनी तरफ से एक फूटी कौड़ी नहीं देने वाला। आर्यांश ने बेबसी से समीक्षा और मनीष की तरफ देखा। मनीष ने पहले ही उससे नजरें फेर ली थी तो वहीं समीक्षा के पास भी चुप रहने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था। पापा जी, अब आप कुछ ज्यादा ही सख्ती कर रहे हैं, ये रहेगा कहाँ पर, समीक्षा ने गिड़गिड़ाते हुए कहा। इसने गोयंका फैमिली का भी घर उनसे दो बार छीन लिया था, ऊपर से उनकी पब्लिक इमेज को भी पूरी तरह बिगाड़ दिया था। क्या तब इसे इस बात का ख्याल था कि वो कहाँ रहेंगे, पृथ्वी ने समीक्षा को जवाब दिया और फिर आर्यांश की तरफ इशारा किया। आर्यांश ने गुस्से में अपनी मुट्ठियां बांध ली थीं और अपना वॉलेट और गाड़ी की चाबियां उनके सामने रखती थीं। गले में जो कीमती ज्वेलरी और रिंग्स पहनी है इन्हें भी निकालो, तुम्हारी घड़ी भी बहुत महंगी है, कल को इसे बेचकर भी तुम कुछ दिन तो गुजारा कर ही सकते हो, पृथ्वी ने आर्यांश के हाथ की तरफ इशारा करके कहा। सीरियसली, मैंने कपूर इंटरनेशनल को इतने साल दिए हैं, इसके बदले मुझे सैलरी तक नहीं दी गई, चाहूँ तो मैं भी अपनी सैलरी की डिमांड कर सकता हूँ, आर्यांश ने चिढ़ते हुए जवाब दिया। ऐसा समझ लो तुम्हारी अब्रॉड में स्टडी और इतने सालों की लग्जरियस लाइफ में वो सैलरी भी कट हो गई, पृथ्वी ने कंधे उचकाकर कहा। आर्यांश ने उनसे किसी तरह की बहस नहीं की क्योंकि पृथ्वी के इतना सख्ती दिखाने पर वो गुस्सा हो गया था। उसने रिंग, चेन, वॉच सब कुछ निकालकर टेबल पर रख दिया था। कपड़े भी निकालो मिस्टर कपूर, या इतना काफी होगा, आर्यांश ने दांत भींचते हुए तंज भरे लहजे में कहा। इस तरह बात करने की जरूरत नहीं है, कपड़े और एहसान के तौर पर तुम्हारे सारे अचीवमेंट डॉक्यूमेंट तुम्हें मिल जाएंगे। उम्मीद है कि तुम एक जॉब तो ढूंढ ही लोगे, वैसे इमेज खराब होने के बाद ये थोड़ा मुश्किल होता है, चाहो तो दीवा गोयंका से पूछ सकते हो। खैर, दीवा से याद आया कि अगर तुम उसके आसपास भी दिखाई दिए तो मुझे तुम्हें पुलिस के हवाले करते हुए जरा भी अफसोस नहीं होगा, पृथ्वी ने आगे कहा और आर्यांश के सामने कुछ पेपर्स कर दिए थे। आर्यांश के कभी नहीं सोचा था कि उसे ये दिन देखना होगा। ऊपर से पृथ्वी ने लीगल डॉक्यूमेंट्स बनवाए थे जिनके हिसाब से आर्यांश दीवा के आसपास नहीं जा सकता था, वरना उसे पुलिस अरेस्ट कर सकती थी। आर्यांश ने गुस्से में पेपर पटक दिए और फिर वहां से बाहर जाने लगा। सार्थक उसके पीछे जाने को हुआ तभी पृथ्वी ने सख्त आवाज में कहा, कहाँ जा रहे हो तुम, अब तुम उसके मैनेजर नहीं रहे हो और ना ही वो तुम्हें सैलरी देने वाला है, अब से तुम मेरे लिए काम करोगे। सार्थक को मजबूरी में वहीं पर रुकना पड़ा। आर्यांश के जाते ही समीक्षा ने रोते हुए कहा, आपने उसके साथ अच्छा नहीं किया, अब वो बेचारा कहाँ जाएगा, उसके पास न रहने की जगह है और न ही अपना गुजारा करने के लिए पैसे। ये काम बहुत पहले तुम लोग कर देते तो आज ये दिन नहीं देखना पड़ता। गलती से भी उसकी हेल्प करने के बारे में किसी ने सोचा है तो उसे भी मैं ठीक यही सजा देने वाला हूँ, खासकर तुम दोनों उससे दूर रहोगे, पृथ्वी ने समीक्षा और मनीष को चेतावनी देते हुए कहा। समीक्षा पैर पटकते हुए वहां से चली गई थी जबकि मनीष उसके पीछे पीछे जा रहे थे। उनके जाते ही पृथ्वी ने सार्थक की तरफ देखा और कहा, न्यूज पब्लिक कर दो कि आर्यांश कपूर अब कपूर इंटरनेशनल का CEO नहीं रहा है। उसने जो भी गलतियां की हैं उसकी जिम्मेदारी कपूर इंटरनेशनल
इंटरनेशनल लेता है और आर्यांश की गलतियां सामने आने पर ही उसे निकाला गया है, ये न्यूज भी सामने आनी चाहिए। लेकिन सार्थक ने बीच में बोलना चाहा। वो जानता था कि ये खबर बाहर आ गई तो इसका आर्यांश की इमेज और फ्यूचर पर किस हद तक असर होगा। उसकी बात पूरी होने से पहले ही पृथ्वी ने उसे काटते हुए कहा, क्या लेकिन अब तुम मुझे समझाओगे कि मुझे क्या करना है या क्या नहीं? तुम्हें उसका साथ देने का ज्यादा मन हो रहा है तो क्यों ना तुम्हारे साथ भी वही किया जाए जो उसके साथ हुआ है। सार्थक ने जल्दी से नामे सिर हिला दिया था। वो आर्यांश की तरह बेरोजगार और बेघर बिल्कुल नहीं होना चाहता था। इसके लिए जरूरी था कि वो पृथ्वी के हर एक फैसले में बिना किसी सवाल के उनका साथ दे। सार्थक तुरंत पृथ्वी के बताए हुए काम में लग गया था और अगले एक घंटे में सब जगह यही न्यूज वायरल हो रही थी कि किस तरह आर्यांश ने अपने पैसों और लाइफ केयर हॉस्पिटल में सबसे बड़ा इन्वेस्टर होने का फायदा उठाकर दीवा को नौकरी से निकलवाया था। उसकी ये गलती सामने आने पर कपूर इंटरनेशनल की अथॉरिटीज ने उसे सीईओ की पोजीशन से हटा दिया था। कोई कपूर इंटरनेशनल की तरफ से लिए इस फैसले की तारीफ कर रहा था कि उन्होंने आर्यांश के इकलौते बच्चे होने के बावजूद उसकी गलतियों पर उसे सजा दी, तो कोई आर्यांश पर तरस खा रहा था। सब जगह बस उसी के चर्चे थे और इन सबके बीच आर्यांश इस वक्त पार्क में बेंच पर बैठा हुआ था। उसके सामने एक एडवर्टाइजमेंट एलईडी स्क्रीन लगी हुई थी जिस पर ये न्यूज चल रही थी। आर्यांश ने उसे देखकर अपना सिर पकड़ लिया था। दादाजी सच में पागल हो गए हैं, एक दो दिन में उनकी अकल ठिकाने आ ही जाएगी। वो ऐसे कैसे मुझे निकाल सकते हैं और मुझे मेरे ही घर में नहीं घुसने दिया गया? आर्यांश गुस्से में दांत पीसते हुए बोला। एक ही दिन में उसकी सारी सिक्योरिटी और सारी लाइफ उससे दूर हो गई थी। वहीं दूसरी तरफ दीवा हॉस्पिटल बेड पर लेटी हुई थी। उसके कहने पर कोई भी उससे मिलने नहीं आया था क्योंकि वो अकेले कुछ समय बिताना चाहती थी। बोर होने पर दीवा ने जब टीवी ऑन किया और सामने आ रही न्यूज को देखा तो उसे भी झटका सा लगा। क्या इसी वजह से आर्यांश अपने दादाजी से इतना डरता था? दीवा ने आंखें बड़ी करके कहा।
उसके लिए ये यकीन कर पाना मुश्किल था कि आर्यांश से उसका सब कुछ छिन गया था। दीवा ने जल्दी से अपना मोबाइल उठाया और उसे कॉल लगाना चाहा, लेकिन तभी उसके हाथ रुक गए थे। नहीं, मैंने उसे खुद ही मुझसे दूर होने को कहा था और आज वो जिन हालातों में है उसका जिम्मेदार वो खुद है। उसे अपनी गलतियों की सजा भुगतनी ही होगी, दीवा ने खुद को सख्त करके कहा। एक पल के लिए आर्यांश की हालत देखकर उसका दिल पिघल जरूर गया था, लेकिन फिर उसने खुद को समझा लिया था। दीवा टीवी बंद करने जा रही थी कि इस बीच उसके कमरे में मिस्टर पृथ्वी कपूर सार्थक के साथ दाखिल हुए। पृथ्वी और दीवा की पहले भी मुलाकात हो चुकी थी, लेकिन वो किसी भी तरह से अच्छी नहीं थी। उस दिन के बाद से ही दीवा के मन में आर्यांश के लिए इतनी कड़वाहट भर गई थी। पृथ्वी को देखकर दीवा बैठने को हुई, तभी पृथ्वी ने उसे हाथ के इशारे से रोकते हुए कहा, लेटी रहो। मैंने डॉक्टर से बात की तो उन्होंने बताया कि तुम काफी कमजोर हो, तुम्हें आराम करना चाहिए। उनके बात बोलने का लहजा काफी नरम और प्यार भरा था, जबकि दीवा ने उस दिन उन्हें काफी गुस्से में देखा था। दीवा ने बिना कुछ कहे उनकी बात पर हामी भरी और एक नज़र उनकी तरफ देखा। जो भी हुआ मैं उसको बदल नहीं सकता हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं उसका जिम्मेदार मैं भी हूँ, जो मैंने आर्यांश पर पूरी तरह भरोसा किया और वो क्या कर रहा है इस तरफ ध्यान देना भी जरूरी नहीं समझा। मेरे जन्मदिन की पार्टी में भी जो भी हुआ उसके लिए मैं तुमसे माफी चाहता हूँ, कोशिश करूंगा कि सब ठीक कर सकूं, पृथ्वी ने मायूस स्वर में कहा। मैं ठीक हूं मिस्टर कपूर, और सच में अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, दीवा ने बुझी हुई आवाज में जवाब दिया। पृथ्वी को समझ नहीं आया कि वो क्या जवाब दे। कुछ पल के लिए वहां बिल्कुल खामोशी छा गई थी, फिर उन्होंने नजर नीचे करके भारी आवाज में कहा, तो वो बच्चा आर्यांश का था और तुम दोनों सच में एक दूसरे से प्यार करते थे। आपकी बर्थडे पार्टी से पहले तक मुझे भी यही लगता था कि हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, लेकिन सब कुछ वन साइडेड था मिस्टर कपूर। जैसा कि उसने कहा कि उसने कभी मुझे शादी का प्रॉमिस नहीं किया था, दीवा ने कड़वाहट से जवाब दिया। पृथ्वी के लिए एक एक शब्द कहना भारी हो रहा था और उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि दीवा के इस दुख में वो कैसे उसे तसल्ली दें। पृथ्वी ने दीवा की तरफ देखा और कहा, अगर तुम प्रेग्नेंट थी तो तुम्हें कपूर फैमिली में से किसी को बताना चाहिए था, क्या उसने जानबूझकर ये किया? नहीं, सच में इसमें उसकी कोई गलती नहीं थी और उसे भी बहुत बुरा लगा था। मैं खुद नहीं जानती थी कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, सच कहूँ तो पता होता तो उससे और आप सबसे बहुत दूर चली जाती, दीवा ने जवाब दिया। उन दोनों की बातचीत काफ़ी संजीदा थी। पृथ्वी से बात करके दीवा को पहली बार महसूस हुआ कि कोई सच में उसे समझने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वो आर्यांश नहीं बल्कि उसके दादाजी थे। आपको नहीं लगता कि आपने उसे बहुत बड़ी सजा दी है? अचानक दीवा के मुंह से निकला। ये तुम कह रही हो? पृथ्वी ने हैरानी से कहा। वो इससे भी बड़ी सजा का हकदार है, लेकिन फिलहाल मेरे बस में इतना ही है। उसे भी दुख है कि उसने अपने बच्चे को खो दिया, वो कहाँ जाएगा? दीवा बोली। अजीब बात है, तुम्हारे दिल में अभी भी उसे लेकर फिक्र है? लड़की, तुम बहुत साफ दिल की हो, और ऐसे लोगों का अक्सर आर्यांश कपूर जैसे लोग फायदा उठाकर निकल जाते हैं, पृथ्वी ने उसे समझाते हुए कहा। पृथ्वी का कहना गलत नहीं था। दीवा को समझ नहीं आया कि वो जवाब में क्या बोले। कोई बात नहीं, धीरे धीरे तुम भी सीख जाओगी, तुमने बहुत कुछ खोया है
और मैं सब कुछ लौटाने की कोशिश भी करूं तो तुम्हारा बच्चा और तुम्हारी डिग्निटी को नहीं लौटा पाऊंगा। लेकिन हाँ, कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस है जहां तुम्हारे साथ हॉस्पिटल में जो भी हुआ उसका खुलासा खुद डॉक्टर और वो पेशेंट का बेटा करेगा जिसने ये सब तमाशा करने के पैसे लिए थे। डॉक्टर माया नाम की औरत भी इसमें जिम्मेदार है और वो भी सामने आकर गवाही देगी। तुम हॉस्पिटल वापस ज्वाइन कर सकती हो और तुम्हें कोई कुछ नहीं कहेगा, पृथ्वी ने सख्त आवाज में कहा। आर्यांश के दादाजी को देखकर दीवा को आर्यांश की याद आ गई। वो बिल्कुल उन्हीं की तरह था, उन्हीं की तरह सख्त और हर नामुमकिन चीज को पैसों के दम पर मुमकिन कर पाने की हिम्मत रखना। शायद आर्यांश को ये खूबी अपने दादाजी से ही मिली थी। दीवा का सच जानने के बाद पृथ्वी पूरी कोशिश कर रहे थे कि वो उसकी नॉर्मल लाइफ उसे वापस लौटा सके, और उसमें सबसे पहले और सबसे जरूरी उसकी नौकरी और उसके ऊपर लगा वो दाग हटाना था। पृथ्वी ने अपनी तरफ से पूरी तैयारी कर ली थी, लेकिन उन्हें हैरानी तब हुई जब दीवा ने उनकी तरफ देखकर इनकार करते हुए नामे सिर हिला दिया था। सच में आर्यांश को बड़ी सजा मिली है या छोटी, अब आप बताइए। लेकिन देखते हैं कि पृथ्वी की अकल ठिकाने आती है या खुद आर्यांश की, और आर्यांश दीवा तक कैसे पहुंचता है। क्या दीवा के दिन में सच में अभी भी आर्यांश को लेकर सॉफ्ट कॉर्नर है जो वो उसके बारे में सोच रही है? चलिए पढ़कर समीक्षा कर दीजिएगा। अगले पार्ट पर मिलते हैं।